بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اللہ کی تلوار ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی تالیف ابو زید جبلی نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کے لیے مرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ جب صحرا میں سفر کا آخری دن آیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع سے، جنہیں آشوب چشم کی شکایت تھی، کہا کہ پانی ختم ہو چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ رافع نے جواب دیا، گھبرائیے نہیں، ہم انشاءاللہ جلدی پانی تک پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دور آگے چل کر جب فوج دو ٹیلوں کے درمیان پہنچی تو رافع نے لوگوں سے کہا، دیکھو یہاں اوسج کی کوئی جھاڑی آدمی کے سر کی مانند نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو ایسی کوئی جھاڑی نظر نہیں آتی۔ اس پر رافع نے گھبرا کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، افسوس اب تم بھی ہلاک ہوئے اور میں بھی۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو جس طرح ہو سکے اسے ڈھونڈ نکالو۔ آخر بڑی تلاش سے وہ جھاڑی ملی، مگر کسی نے اسے کاٹ دیا تھا اور صرف اس کا تنا باقی رہ گیا تھا۔ جھاڑی ملنے پر مسلمانوں نے بڑے زور سے تکبیر کہی۔ رافع نے کہا، اب اس جھاڑی کی جڑ کے قریب مٹی کھودو۔ مٹی کھودنے سے وہاں ایک چشمہ نکل آیا جس سے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد راستے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دقت اور پریشانی لاحق نہیں ہوئی اور وہ جلد از جلد سفر طے کرتے ہوئے سوا پہنچ گئے۔ اس واقعے کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ رافع کو جزائے خیر دے، اس نے قراقر سے لے کر سوا تک کے راستے تک کی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ جب لشکر اس راستے پر سے گزرا تو اسے 5 روز تک سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ راستہ انتہائی کٹھن اور دشوار گزار تھا اور اس سے قبل کسی انسان کا اس پر سے شاید ہی گزر ہوا ہو۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے ذرا پہلے سوا پہنچے تو پہنچتے ہی آپ نے بستی پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ایک جماعت شراب نوشی میں مشغول تھی، درمیان میں شراب کا کنڈا رکھا تھا اور مغنی جس کا نام حرقوس تھا یہ اشعار گا رہا تھا، اے دوستو مجھے ابو بکر کے لشکر پہنچنے سے قبل شراب پلا دو، شاید ہماری موت کا وقت قریب ہو اور ہم اس سے بے خبر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے قبل مسلمانوں کا لشکر خالد کی سرکردگی میں بشر کی طرف سے تم پر حملہ کر دے گا۔ کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ابو بکر کا لشکر اس ہیبت ناک اور خوفناک جنگل سے گزر کر عین اس وقت ان کے سروں پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی مغنی پر حملہ کر کے اس کی گردن اڑا دی اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا۔ وہاں سے مسلمان مال غنیمت حاصل کر کے آگے بڑھے اور عرق پہنچے۔ عرق صحرا حلب کے آخر میں تدمر کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس کی نواحی زمین سرسبز و شاداب ہے اور وہاں کھجور اور زیتون کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ وہاں کے باشندوں نے مصالحت کر لی، عرق سے آپ تدمر پہنچے۔ تدمر صحرا شام میں ایک پرانا اور مشہور قصبہ ہے۔ اس کے اور حلب کے درمیان 5 دن کی مسافت ہے۔ وہاں کے باشندے قلعہ بند ہو گئے لیکن آخر کار انہوں نے صلح کر لی۔ تدمر سے آپ قریتین پہنچے جو شہرہ شام میں حمص کے علاقے میں ایک بڑا قصبہ ہے۔ اس کے باشندوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے آپ نے حوارین کا رخ کیا۔ وہاں کے باشندے بھی لڑائی کے لیے تیار تھے۔ لڑائی ہوئی جس میں انہیں شکست ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ وہاں سے چل کر آپ قسم پہنچے جو عراق کی سرحد پر صحرا شام کے قریب ایک بستی ہے۔ وہاں کے باشندوں نے جو قضاء کی شاخ بنو مشجع سے تعلق رکھتے تھے صلح کر لی۔ وہاں سے روانہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ علم عقاب اڑاتے ہوئے سنیت العقاب پہنچے۔ سنیت العقاب دمشق کے شمال میں ایک درہ ہے۔ یہاں سے دمشق اور غوطہ کا میدان سامنے نظر آتا ہے۔ وہاں سے موج راحت روانہ ہوئے۔ مرج راحت دمشق کے مشرق میں غوطہ کے ایک سبزہ زار کا نام ہے۔ یہاں انانیوں سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ آپ نے انہیں شکست دے کر وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ यहाँ से आपने फौज का एक दस्ता गौता की तरफ रवाना किया, जो कामयाब व कामरान होकर वापस आ गया। मरज राहत से चलकर आप बसरा पहुंचे। वहां के बाशिंदे पहले तो मुकाबले पर आए, लेकिन फिर सुलह कर ली। बसरा शाम का पहला शहर है जो हजरत खालिद रजिला तालान और इराकी फौज के हाथों फतह हुआ। हजरत खालिद रजिला तालान ने खुम्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रजिला तालान की खिदमत में रवाना किया और आगे चल खड़े हुए। बाज रिवायत में है कि हजरत खालिद रजिला तालान के पहुंचने से पहले अबू उबैदा बिन उल जराह रजिला तालान, शुरजेल बिन हसना और यजीद बिन सुफियान रजिला तालान यहाँ मौजूद थे, और इन सब सरदारों ने मिलकर शहर को फतह किया। इसके बाद वो हजरत उमर बिन अल आस रजिला तालान की मदद के लिए चले गए, लेकिन हमारे ख्याल में ये बात ठीक नहीं। बसरा को सिर्फ हजरत खालिद रजिला तालान ने फतह किया, और इन सब सालारों से आप यरमूक में जाकर मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजिला तालान के खतूत और दीगर वाकयात से भी हमारे बयान की तस्दीक होती है। माह रबीउल अव्वल 13 हिजरी में आप यरमूक पहुंच गए। उधर बाहान भी रूमी फौजों की मदद के लिए पहुंच गया। उसके साथ पादरी और राहिब भी थे, जिनका काम रोमियों को जंग के लिए उभारना और जोश दिलाना था। मुसलमान हजरत खालिद बिन वलीद रजिला तालान के पहुंचने पर खुश थे, और रूमी बाहान के पहुंचने पर। इन जंगों के जिक्र से पहले जो हजरत खालिद रजिला तालान को शाम में पेश आई, इस बात का फैसला कर लेना जरूरी है कि इन मार्कों में हजरत खालिद रजिला तालान की क्या हैसियत थी। आया इनकी हैसियत शाम में सिपा सालार आजम की थी, या वो दूसरे मुसलमान सरदारों की तरह जो अपनी अपनी फौजों के साथ रोमियों से मुकाबला करने के लिए यरमूक पहुंचे थे, सिर्फ अपनी उस फौज के सिपा सालार थे जो इराक से उनके साथ आई थी। क्या खालिद रजिला तालान बिन वलीद शामी अफवाज के सिपा सालार आजम थे? खालिद बिन वलीद रजिला तालान की हैसियत के मुताल्लिक मौर्रखीन की बयान करदा रिवायात में काफी इख्तलाफ पाया जाता है। तबरी के बाज रिवायात में मजकूर है कि खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजिला तालान ने खालिद बिन वलीद रजिला तालान को अफवाज शाम का सिपा सालार आजम बनाकर भेजा था। चुनाचा वो लिखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजिला तालान ने इन अफवाज को यरमूक के मुकाम पर जमा होने का हुक्म दिया, और इराक से हजरत खालिद बिन वलीद रजिला तालान को इन सब का सिपा सालार बनाकर भेजा। इसी तरह एक और जगह लिखते हैं, शाम में अबू उबैदा, शुरजील, यजीद और उमरू बिन अल आस रजिल्लाहु ताला अन्हुम अपनी अपनी फौजें लिए हुए मौजूद थे। इन तमाम फौजों के सिपा सालार खालिद बिन वलीद रजिला तालान थे। तबरी के अलावा एक और मौर्रिख मुकद्दसी भी लिखते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजिला तालान ने खालिद बिन वलीद रजिला तालान को इराक से तमाम इस्लामी फौजों का सिपा सालार बनाकर शाम भेजा। ताहम ये रिवायत ज्यादा काबिल एतमाद नहीं। हकीकत यही है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजिला तालान सिर्फ उस फौज के सिपा सालार थे जो उनके साथ इराक से आई थी। इस दावे के सबूत में मंदरजा ज़ेल उमूर पेश किए जाते हैं। नंबर एक, हजरत खालिद रजिला तालान को उमराए शाम की मुआवनत और इमदाद के लिए भेजा गया था, उन पर अमीर बनाकर नहीं। नंबर दो, तबरी में मजकूर है कि जब यरमूक पर तमाम फौजें इकट्ठी हो गई और रोमियों से जंग करने की तैयारियां होने लगी, तो हर फौज हजरत अबू बकर सिद्दीक के हुक्म के मातहत अपने ही अमीर के पीछे नमाज अदा करती थी। अलबत्ता बाज़ औक़ात कोई अमीर किसी दूसरे अमीर के पीछे भी नमाज अदा कर लेता था। जब हजरत खालिद रजिला तालान वहां पहुंचे, तो उन्होंने अपनी फौज को एक तरफ ठहराया और अलहदा नमाज अदा की। अगर वो सिपा सालार आजम होते तो उन्हें अलहदा नमाज अदा करने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो तमाम फौजों का इमाम होना चाहिए था। नंबर तीन, जंग शुरू होने से पहले आपने तमाम उमरा को इकट्ठा करके उन्हें ये मशवरा दिया कि मौजूदा हालात में अलहदा अलहदा जंग करना ठीक नहीं है। मुनासिब ये है कि तमाम फौजों को मिला दिया जाए और बारी बारी हर अमीर क्यादत के फराइज अंजाम दे। साथ ही आपने ये दरख्वास्त की कि अगले रोज के लिए उन्हें मुकर्रर कर दिया जाए। अगर आप सिपा सालार आजम होते तो आपको ऐसा मशवरा देने और ऐसी दरख्वास्त करने की क्या जरूरत थी? नंबर चार, बिलाजरी ने लिखा है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद बसरा पहुंचे और इस्लामी अफवाज से मिले, तो तमाम सिपा सालारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको अपना अमीर मुंतखब कर लिया। इस रिवायत से यह भी पता चलता है کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سپہ سالار اعظم مقرر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ خود اسلامی افواج کے عمرا نے آپ کی جنگ قابلیت کو دیکھ کر انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا۔ جنگ یرموک۔ رومیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوجیں یکجا نہیں تھیں، بلکہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے امیر کے ماتحت چھاؤنیوں میں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک تھی۔ رومیوں کے عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی لشکر بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ طبری کے بیان کے مطابق رومیوں کی تعداد 140,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن مسلمانوں کی مجموعی تعداد 36,000 اور بعض روایات کے مطابق 46,000 تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو بھی رومیوں کی عظیم الشان فوج کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں تھی۔ چاہ جائے گا علیحدہ علیحدہ ہر لشکر کی کچھ حیثیت ہوتی۔ سید امیر علی یرموک کے متعلق لکھتے ہیں، یرموک ایک غیر معروف دریا ہے جو حوران کی سطح سے نکل کر جھیل گیلیلی کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جا گرتا ہے۔ دونوں دریاؤں کے مقام اتصال سے 30 میل اوپر دریائے یرموک نصف دائرے کی صورت میں ایک چکر کاٹتا ہے، جس سے اتنا وسیع میدان بن جاتا ہے کہ اس میں پوری فوج سما سکتی ہے۔ اس دریا کے کنارے پر گہرے کھڈ تھے۔ اس گھاٹی کو واقوسہ کہتے ہیں، جسے اسلامی تاریخ میں زبردست شہرت حاصل ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہر فوج اپنے اپنے امیر کے ماتحت علیحدہ علیحدہ مقیم ہے اور علیحدہ ہی نماز پڑھتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو علیحدہ ہی ٹھہرایا اور علیحدہ ہی نماز پڑھی۔ اس وقت مسلمان رومیوں کی عظیم الشان فوج کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، اور رومی باہان اور ان کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر طرفین میں لڑائی شروع ہوئی۔ بالآخر رومیوں نے شکست کھائی اور وہ پسپا ہو کر خندقوں تک ہٹ گئے۔ ایک مہینے تک یہ لوگ لڑائی کے لیے آگے نہ بڑھے۔ پادری اور راہب اس عرصے میں انہیں جوش و خروش دلاتے رہے، اور یہ کہ ان کے مذہبی جذبات کو ابھارتے رہے کہ اگر اس موقع پر تم نے بزدلی دکھائی تو پھر عیسائیت کا خاتمہ۔ پادریوں کی تدابیر کارگر ثابت ہوئیں۔ پورے ایک ماہ بعد رومی ایک ایسے ولولے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلے جس کی نظیر پہلے کبھی نہیں ملتی۔ جب مسلمانوں نے رومیوں کی جنگ کی تیاریاں دیکھیں تو وہ بھی علیحدہ علیحدہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کو پسند نہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس طرح رومیوں کا پلہ بھاری رہے گا اور مسلمانوں کو سراسر نقصان ہوگا۔ رومیوں کا لشکر 2.5 لاکھ اشخاص پر مشتمل تھا اور ایک کمان کے تحت پوری طرح منظم۔ اگر اسلامی فوج نے ان سے علیحدہ علیحدہ جنگ کی تو مسلمانوں کے حصے میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پانچوں اسلامی فوجوں کو ایک ہی نظام میں منسلک کر دیا جائے اور وہ ایک ہی امیر کے ماتحت منظم اور جمع ہو کر دشمن سے جنگ کریں۔ چنانچہ آپ نے تمام امرا کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آج کا دن اللہ کے اہم ترین دنوں میں سے ہے۔ آج کسی کے لیے فخر و مباحات اور خود آرائی اور خود ستائی مناسب نہیں۔ جہاد خالص اللہ کے لیے کرو اور اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بناؤ۔ یاد رکھو، آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک ایسی قوم جو ہر طرح منظم اور مرتب ہے، تمہارا علیحدہ علیحدہ لڑنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ اگر انہیں جو تم سے دور ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے حالات کا علم ہوتا تو وہ کبھی تمہیں اس طرح لڑنے کی اجازت نہ دیتے۔ بے شک تمہیں ان کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ملا، لیکن تم اس معاملے کو اس طرح سر انجام دو گویا یہ تمہارے خلیفہ اور اس کے خیر خواہوں کا حکم ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر عمرہ نے کہا، آپ کی فرمائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا کہ ہم یہ مہم بآسانی سر کر لیں گے۔ اگر انہیں موجودہ حالات کا علم ہوتا تو وہ ضرور تمہیں اکٹھا رکھتے۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو وہ پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت سخت اور مشرکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم علیحدہ علیحدہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو الگ الگ شہر کے لیے نامزد کیا گیا ہے، لیکن اگر تم اس موقع پر کسی ایک شخص کو اپنا امیر تسلیم کر کے اس کی اطاعت اختیار کر لو तो उससे ना तुम्हारे मरातब में कोई फर्क पड़ेगा और ना अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन के नजदीक तुम्हारा दर्जा कम होगा। जरा देखो तो सही, दुश्मन ने कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। याद रखो, अगर आज हमने इन्हें इनके खंदकों में धकेल दिया तो हम हमेशा इन्हें धकेलते ही रहेंगे, लेकिन अगर इन्होंने हमें शिकस्त दे दी तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरी तजवीज इस बारे में यह है कि हम में से हर शख्स को बारी बारी अमारत का मौका मिलना चाहिए। अगर आज एक अमीर है तो कल दूसरा, परसों तीसरा, तरसों चौथा, यहाँ तक कि हर शख्स को अमीर बनने का मौका मिल जाएगा। आज के दिन के लिए तुम मुझे अमीर बना दो। हजरत खालिद रजील तालन की राय नहायत माकूल थी। तमाम उमरा इस पर मुत्तफिक हो गए और पहले रोज के लिए उन्होंने हजरत खालिद रजील तालन को अमीर मुकर्रर कर दिया। मुस्लिम मुजाहिदीन ये समझते थे कि रूमियों की योरिश आज भी आम दिनों की तरह ही होगी और लड़ाई बहरहाल तूल खींचेगी, इसीलिए बारी बारी हर एक को अमीर बनने का मौका दिया जाए। हजरत खालिद रजील तालन ने लश्कर को जिस तरीके से मुरतब किया वो अरबों के लिए बिल्कुल अनोखा था। आपने इस्लामी लश्कर को 38 दस्तों में मुनकसिम किया। एक दस्ता कमोबेश 1,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। आपने फरमाया, तुम्हारे दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और वो अपनी कसरत तादाद पर नाजा है। इसके मुकाबले में यही तदबीर मुनासिब है कि हम अपनी फौज को बहुत से दस्ते बना दें ताकि दुश्मन को हमारी तादाद असल से बहुत ज्यादा नजर आए। कल्ब में आपने 18 दस्ते रखे और अबू उबैदा को उनका सरदार बनाया। इन दस्तों में अकरमा बिन अबू जहल और काका बिन उमरो भी शामिल थे। मैमना पर आपने 10 दस्ते मुतय्यन किए और इनका सरदार उमरो बिन अल आस को बनाया। इन दस्तों में शुजील बिन हसना रजील तालान भी थे। मैसरा पर 10 दस्ते मुतय्यन किए और इनका सरदार यजीद बिन अबू सुफियान को मुकर्रर किया। हर दस्ते का अलहदा सरदार भी था जो मैमना, मैसरा और कल्ब के सरदारों से अहकाम हासिल करता था। इन दस्तों के सरदार वो लोग थे जो अपनी बहादुरी, जवानमर्दी और शुजाअत में अपनी नजीर आप थे। मसलन काका बिन उमरू, अकरमा बिन अबू जहल, अयाज बिन गनम, हाशिम बिन अदबा और अब्दुलरहमान बिन खालिद बिन वलीद रजिला तालान हो, यानी हजरत खालिद रजिला तालान हो के बेटे की उम्र उस वक्त 18 बरस थी। हजरत खालिद रजिला तालान ने इस तरतीब के अलावा लश्कर का हरावल दस्ता भी बनाया था जिसका सरदार कयास बिन उमीम को मुकर्रर किया था। काजी की खिदमत हजरत अबू दरदा रजिला तालान के सुपुर्द हुई। लश्कर के कारी हजरत सैयदना मिकदाद थे जो लश्कर को सूरह अनफाल जिसमें जिहाद का जिक्र है पढ़कर सुनाया करते थे। सामान के अफसर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजिला तालान थे। वाइज अबू सुफियान थे, वो लश्कर में गश्त करते रहते थे और हर दस्ते के सामने ठहर कर कहते थे, अल्लाह अल्लाह, तुम हामियाने अरब हो और दीने इस्लाम के मददगार, तुम्हारा मद्दे मुकाबिल हामियाने रूम और शिर्क के मददगार हैं। ए अल्लाह, आज की जंग में सिर्फ तेरे नाम के लिए है। ए अल्लाह, अपने बंदों पर अपनी मदद नाजिल फरमाओ। इन इंतजामात से ये बात आशकारा हो जाती है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजील तालान ने लश्कर की कमान अपने हाथ में लेने के बाद मुसलमानों की कुवत में ईजा दी और जोशो खरोश और दुश्मन पर फतह पाने का अज़्म समीम पैदा करने में कोई दकीका फरो गुजाश्त न किया। दूसरी तरफ आपने दुश्मन के दिल में जो अपनी ताकत और कसरत पर नाजा था मुसलमान का रोब पैदा कर दिया और इसके तमाम अजाइम पर औस पड़ गई। ये तरतीब और निज़ाम इस निज़ाम से चंदा मुख्तलिफ नहीं जो आजकल जंगों में अख्तियार किया जाता है। इन तमाम इंतजाम से फारिग होने के बाद हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ने कल्ब को, जिसमें काका बिन उमरू और अकरमा बिन अबू जहल शामिल थे, आगे बढ़ने और दुश्मन पर हमला करने का हुक्म दिया। ये दोनों रिज़िया अशार पढ़ते हुए आगे बढ़े और जंग शुरू कर दी। जंग की आग पूरे जोरों शोर से भड़क उठी थी। हर तरफ घोड़ों के हिनहिनाहट, नेजों और तलवारों की झनकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। यकायक रूमी फौज के कल्ब का सरदार जरबा अपने लश्कर से निकला और मुसलमानों और रूमियों की सफों के दरमियान आकर पुकारा कि खालिद रजिला तालान हो मेरे पास आए। हजरत खालिद रजिला तालान हो अबू उबैदा को अपनी जगह मुतय्यन करके उसके पास पहुंच गए। दोनों सरदार एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि उनके घोड़ों की गर्दनें आपस में मिल गईं। जरबा ने कहा, ए खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तुमसे चंद बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ। इनके जवाब सही देना, झूठ ना बोलना क्योंकि शरीफ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही मुझे धोखा देना क्योंकि करीमुन नफ्स इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देता। इसके बाद खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और जरबा के दरमियान मंदरजा झेल मुकालमा हुआ। जरबा ने कहा, पहली बात तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी पर आसमान से कोई तलवार उतारी थी जो उन्होंने तुम्हें दे दी, और उसी की बरकत है कि जिस कौम पर तुम तलवार इस्तेमाल करते हो वो शिकस्त खा जाती है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं। जरबा ने कहा, फिर तुम्हें सैफुल्ला क्यों कहा जाता है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने हम में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया। शुरू में तो हम सब ने इनकार किया, लेकिन फिर हम में से बाज ने उन्हें कबूल कर लिया और इनकी इताअत इख्तियार कर ली, लेकिन बाज बदस्तूर इनकार और तकजीब करते रहे। मैं भी उन लोगों में था जिन्होंने आपका इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर दूर रहे और आपसे लड़े, फिर अल्लाह ने हमारे दिलों पर कब्जा करके हमें हिदायत दी और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तुम अल्लाह की तलवार हो जिसे उसने मुशरिकीन पर मुसल्लत किया है। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फतहमंदी की दुआ भी फरमाई, इस वजह से मेरा लकब सैफुल्लाह पड़ गया और इस वजह से मैं मुशरिकों के लिए सबसे सख्त मुसलमान हूँ। जरबा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम मुझे किन बातों की तरफ दावत देते हो? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं तुम्हें इस अमर की दावत देता हूँ कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और इकरार करो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लाए हैं वो अल्लाह की तरफ से है। जरबा ने कहा, अगर कोई शख्स इन बातों को कबूल न करे तब क्या सूरत होगी? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तब वो जिजिया अदा करे, हम उसकी जानो माल के मुहाफिज होंगे। जरबा ने कहा, अगर वो जिजिया भी अदा ना करे करना चाहे? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तब हम उसे लड़ाई की दावत देंगे और उससे जंग करेंगे। जरबा ने कहा, उस शख्स का क्या रुतबा होगा जो आज तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाए और तुम्हारी दावत कबूल कर ले? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने जो फराइज हम पर आयद किए हैं उनके लिहाज से अदना आला अव्वल और आखिर सब बराबर और हम रुतबा है। जरबा ने कहा, जो शख्स आज तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाए क्या उसे वही अजर और सवाब मिलेगा जो तुम्हें मिलता है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक उसे वही अजर और सवाब मिलेगा जो हमें मिलेगा, बल्कि हमसे भी ज्यादा। जरबा ने कहा, वो किस तरह सवाब में तुम्हारे हम रुतबा होगा जबकि तुम उससे पहले इस्लाम कबूल कर चुके हो? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब हम दीन इस्लाम में दाखिल हुए उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदे हयात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, आप हमें जमीन और आसमान की खबरें सुनाते थे। जिस शख्स को वो ईमान अफरोज नज़ारे देखने का मौका मिला जो हमने देखे और उन आयात इलाही का सुनने का मौका मिला जो हमने सुनी, उसके लिए लाजिम तो था कि वो इस्लाम लाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करता। लेकिन तुम लोग के जिन्होंने ना वो चीज़ें देखी जिन्हें देखने का हमें मौका मिला और ना वो अजीब व गरीब बातें सुनी जिन्हें सुनने का हमें मौका मिला, अगर सिदका दिल और खुलूस नीयत से यानी बगैर मुशाहिदा किए और परखे दीन इस्लाम में दाखिल हो गए तो हमसे अफजल हो गए। जरबा ने कहा, मुझसे कसमिया कहो कि तुमने मुझसे ये सब बातें सच कही हैं, मुझे धोखा तो नहीं दिया और मेरा दिल खुश तो नहीं करना चाहा? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा है सच कहा है, मुझे तुम्हारा या किसी और का जरा सा भी खौफ नहीं। अल्लाह गवाह है कि जो कुछ तुमने मुझसे पूछा मैंने उनका ठीक ठीक जवाब दिया। जरबा ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ये कहकर उसने अपनी ढाल उलट दी और हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हो लिया और उनसे दरख्वास्त की कि मुझे इस्लाम की तालीम दीजिए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे अपने खेमे में ले गए और पानी की एक मुश्क मुहैया की जिससे उसने गुस्ल किया। फिर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे वजू कराया और 2 रकत नमाज पढ़ाई। जब ये रूमी सरदार हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ चला तो रूमी सरदार समझे कि उनके सरदार ने मुसलमानों पर हमला कर दिया है। ये ख्याल करके उन्होंने भी मुसलमानों को उनकी जगहों से पीछे हटा दिया। लेकिन मददगार दस्ते जिन पर अकरमा और हारिस बिन हशाम मुतय्यन थे अपनी जगह जमे खड़े रहे। इसी अस्ना में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरबा के हमरा घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में आए। उस वक्त रूमी मुसलमानों के सफों में घुस आए थे। आपने मुसलमानों को ललकारा, जिस पर उनके कदम जम गए। उन्होंने रूमियों पर हमला करके उन्हें पीछे धकेल दिया। कोई शख्स भी हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में मैदान में कायम न रह सका। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जरबा हमला करते थे तो सफे के सफे पलट देते थे। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जरबा सुबह से लेकर मगरिब तक बराबर रूमियों से लड़ते रहे। आखिरकार जरबा शहीद हो गए। उन्होंने सिवाय इन दो रकतों के जो इस्लाम लाने के वक्त अदा की थी और कोई नमाज अदा नहीं की। जंग की शिद्दत के बायस मुसलमान बाकायदा नमाजें अदा न कर सके और उन्होंने जहर और असर की नमाजें मैदान जंग ही में इशारों के साथ अदा की। मुसलमानों के हमले की शिद्दत के बायस रूमियों के पांव उखड़ गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके कल्ब में घुस गए। मैदान जंग लड़ने के लिए तो बेहद वसी था, मगर भागने के लिए बहुत तंग। जब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ते हुए आगे बढ़े तो रोमियों के घोड़ों को भागने के लिए रास्ता मिल गया और वो बेतहाशा सहरा की जानिब भागने लगे। मुसलमानों ने भी उनसे तारुज न किया बल्कि भागने के लिए रास्ता दे दिया। रोमी सवार भाग कर जहां जिसके सींग समाये चल दिया। सवार तो भाग गए मगर पैदल फौज को भागने के लिए रास्ता न मिला। अब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और उनका सफाया करना शुरू किया। रूमी अपने खंदक में घुस गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां भी पहुंच गए तो उन्होंने वाकूसा की घाटी का रुख किया। अक्सर रूमियों ने मैदान जंग में साबित कदम रहने के लिए पांव में बेड़ियां डाली हुई थी। वो धड़ाधड़ उस घाटी में गिरने लगे। अगर एक गिरता तो अपने साथ 10 को लेकर गिरता था। अंधेरा गहरा हो चुका था। वो लोग खड्ड को देख ना सके जो रूमी भाग भाग कर इधर आते। इन्हें खबर ही ना होती कि आगे वालों पर क्या गुजरी, वो भी उसी खड्ड में गिर जाते। तबरी के बयान के मुताबिक 1,20,000 रोमी वाकूसा की घाटी की नजर हुए। उनमें से 80,000 ने अपने आप को बेड़ियों से जकड़ रखा था। ये तादाद उन सवारों और प्यादों के अलावा है जो मैदान जंग में काम आए। ये लड़ाई दिन और रात के अक्सर हिस्से में जारी रही। सुबह तुलू होने से पहले ही हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूमी लश्कर के सिपा सालार आजम के खैमा तक पहुंच चुके थे। ये जंग हजरत उमर के अहद की पहली जंग है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के 20 रोज बाद वकूफ में आई। गो जंग यरमूक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में वकूफ पजीर हुई, लेकिन हमने इसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इसलिए शुमार किया कि इसकी तैयारी आप ही के अहद में की गई थी। रोमियों के बड़े बड़े सरदारा ने फौज इस इबरतनाक शिकस्त को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने आप को जिल्लत से बचाने के लिए अपनी टोपियों से अपने मुंह छुपाए और मैदान की एक जानिब होकर बैठ गए और कहा, अगर हम मुसर्रत का दिन देखने और ईसाइत की हिमायत करने के काबिल नहीं हैं, तो हम इस जिल्लत और बदबख्ती के दिन को भी अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते। चुनाचा वो लोग इसी हालत में कत्ल कर दिए गए। ये आदत आज भी बाज अरबी कबाइल में पाई जाती है कि जब लश्कर शिकस्त खा जाता है तो उसके सरदार अपने आप को शिकस्त की आड़ से बचाने के लिए एक तरफ होकर बैठ जाते हैं और मुंतजर रहते हैं कि कब दुश्मन के सिपाही आकर अपनी तलवारों से उसका काम तमाम कर दें। इस जंग में मुसलमानों ने जिस बहादुरी, जोश और सब्र इस्तकामत से दुश्मनों का मुकाबला किया वो अपनी मिसाल आप है। अकरमा बिन अबू जहल ने जब देखा कि रोमियों का दबाव बढ़ता ही चला जाता है तो उन्होंने जोश में आकर कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मैदान में लड़ता रहा हूँ, क्या आज की लड़ाई में तुमसे डर कर भाग जाऊंगा? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर वो पुकारे, आओ मौत के लिए कौन बैत करता है? ये सुनकर हारिस बिन हशाम, जरार बिन अल अजूर और 400 दूसरे बहादुर और मोअज्ज़ज़ मुसलमानों और शहसवारों ने अकरमा के हाथ पर मौत की बैत की। इन लोगों ने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे के सामने बेजिगरी से लड़ना शुरू कर दिया। इनमें से अक्सर ने जाम शहादत नोश किया और जख्मी होने से तो कोई भी नहीं बचा। अकरमा और उनके बेटे उमरू बिन अकरमा शदीद जख्मी होने की हालत में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाए गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकरमा का सर अपनी रान पर और उमरू का अपनी पिंडी पर रख लिया। अब दोनों बाप बेटों के मुंह से खून पहुंचते और उनके हलक में पानी के कतरे टपकाते जाते थे। इस जंग में सिर्फ शहसवारों और बहादुरों ने ही कारहाए नुमाया अंजाम नहीं दिए, बल्कि मुसलमान औरतें भी फौज की मदद में किसी तरह पीछे नहीं रहीं। वो मैदान जंग में पानी पिलाती, जख्मियों की मरहम पट्टी करती और अपने मर्दों के दिलों में जोशीले अल्फाज के साथ गैरत और हमीयत के जज्बात भड़काती फिर रही थी। बाज़ औरतों ने तो बाकायदा जंग में हिस्सा भी लिया था। जंगे यरमूक में मुसलमान शहदा की तादाद 3,000 थी, जिनमें से सिर्फ सहाबा किराम 1,000 की तादाद में थे। इस जंग में शहीद होने वाले बदरी सहाबा की तादाद 100 थी। दौरान जंग ही में मदीना मुनव्वरा से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खबर और हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सालारी से माजूली और उनकी जगह हजरत अबू उबैदा के तकर्रुर का हुक्म लेकर पहुंचा। जब लोगों ने उसे देखा तो इससे मदीने के हालात पूछने शुरू किए। उसने मौके की नजाकत को देख कर कहा, मदीने में हर तरह खैरियत है और तुम्हारी इमदाद के लिए मजीद फौजें आ रही हैं। उसके बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक तरफ ले जाकर तमाम हालात बताए और जो कुछ उसने फौज से कहा था वो भी बताया। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके फेल की तारीफ की और उससे खत लेकर अपने तरकश में डाल लिया। उन्होंने खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खबर को मुश्तहिर ना किया, क्योंकि आपको अंदेशा था कि कहीं ये खबर सुनकर मुसलमानों की हिम्मतें पस्त ना हो जाएं। जब जंग खत्म हो गई तो आपने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत उनके सुपुर्द कर दिया और अमानत का काम उन्हें सौंप कर उनकी मातहती कबूल कर ली। पता है यरमूक पर कई शौरा ने तबाह आजमाई की है। यहाँ मिसाल लिए काका बिन उमरू रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिसाल के लिए काका बिन उमरू रजी अल्लाह तआला अन्हु के चंद अशार पेश किए जाते हैं। वो कहते हैं, देखा तुमने, हम जंगे यरमूक के मौके पर भी इसी तरह कामयाब हुए जिस तरह हम इराक में कामयाबी हासिल कर चुके थे। हमने रूमियों को बेधड़क कत्ल किया और उनकी जमीयत को वाकूसा में पाश पाश करके रख दिया। उनकी तलवारें उनके किसी काम ना सकी, वो वाकूसा की घाटी में गिरकर खत्म हो गए। उनका अंजाम हद दर्जा इबरतनाक हुआ। शिकस्त और नामुरादी के जो कड़वे घूंट उन्होंने पिए, उनका पीना हर कसो नाकस के बस में नहीं। मशरिक की तारीख में ये जंग एक फैसलाकुन मार्के की हैसियत रखती है। इस जंग के जरिए न सिर्फ एक वसी खत्ते से कैसर और रूम का इकतदार का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया, बल्कि बिलादे बनू अल असफर यानी शाम में इस्लामी फतूहात का दरवाजा भी खुल गया। इस जंग के मौके पर जो कुछ पेश आया वो फुरून जंग और उमूर क्यादत का एक अजीम मुजाहरा था, जिस वक्त हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम पहुंच खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम पहुंचे, उस वक्त हालत ये थी कि मुसलमान अपने दुश्मनों से अलहदा अलहदा जंग कर रहे थे। हर लश्कर अपने अमीर के मातहत लड़ता था, बाहमी यकजहती मकफूत थी। इनके दुश्मनों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी और जंगी साजो सामान भी उनके पास वाफिर था। हरकल ने अपनी फौजें इस ख्याल से जमा की थी कि मुसलमानों को ऐसी शिकस्त फाश दी जाएगी कि फिर उन्हें सर उठाने और शाम का रुख करने की जरूरत न होगी। अगर इन हालात में मुसलमान परागंदगी और इंतशार की हालत में लड़ते रहते तो इनकी कामयाबी नामुमकिन थी। इस मौके पर हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी काबिलियत और जंगी इस्तेदाद का जो मुजाहरा किया, उसने मुसलमानों को मुकम्मल तबाही से बचाकर उनके लिए फतह और जफर के रास्ते खोल दिए। उन्होंने मुसलमानों को जमा करके एक तकरीर के जरिए उनकी कमजोरियों को उन पर आयां किया और बताया कि अलहदा अलहदा क्यादत के मातहत दुश्मनों से जंग करना सख्त नुकसान का मौजिब होगा और इस वक्त उनके बचाव की सिर्फ एक ही सूरत है कि तमाम मुसलमान एक सिपा सालार के मातहत होकर जंग करें और तमाम अहकामात इसी से हासिल करें। इस बेनजीर तजवीज पर इत्तफाक के बाद जब हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द क्यादत का मोहतमिम बिशान काम सुपुर्द किया गया तो आपने लश्कर को जिस तरह मुरतब किया और जिस तरह उसकी सफबंदी की वो अरबों के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। इसका फायदा ये हुआ कि दुश्मनों को मुसलमानों की तादाद असल से बहुत ज्यादा नजर आने लगी और वो मुसलमानों से मरूब हो गए। मुसलमानों के मुख्तलिफ लश्करों को एक क्यादत के तहत मुतहद करने का तजुर्बा बाद वाले जमाने में भी इख्तियार किया गया और इससे खातिर ख्वाह फवायद हासिल हुए। पहली जंग अजीम के आगाज में इत्तहादी कौमों की फौजें अपने अपने मुल्क के कमांडर इन चीफ के मातहत थीं, लेकिन जब जर्मन की फौजों ने पेशकदमी शुरू की तो इत्तहादियों को बड़े सोचो विचार गौर फिक्र और बाहमी सलाह मशवरे के बाद इसी तरीके पर अमल करना पड़ा जो 1300 साल पहले यरमूक के मैदान में हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु इख्तियार कर चुके थे। चुनाचा उन्होंने अपनी तमाम फौजों को मुतहद करके एक सुप्रीम कमांडर के मातहत कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें बिलाखिर फतह और कामयाबी नसीब हुई। दूसरी जंग अजीम में भी यही तरीका आजमाया गया। मौजूदा जमाने में भी मुआहिदा शुमाली ओकयानूस की तंजीम के तहत मगरबी यूरोप की अफवाज को एक कमान के तहत करके उसी इसी उसूल को अपनाया जा रहा है। बाई हमा इन दोनों हालतों में बड़ा फर्क है। जंगी यरमूक के मौके पर यह तजवीज पेश करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अकेले खालिद की थी, लेकिन जंगी अजीम के मौके पर पूरे 2 साल के गौर फिक्र और बड़े बड़े जंगी मुदब्बरीन की मुतादिब कॉन्फ्रेंसों के बाद ये तजवीज अमल में लाई गई। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने किसी जंगी मदरसे में तालीम नहीं पाई थी, लेकिन इत्तेहादियों के कमांडर और फौजी अफसर दुनिया के बड़े बड़े फौजी कॉलेजों और अजीम जंगी तरबियत गाहों के तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता थे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला के जहन में ये तजवीज आज से 1300 साल पहले आई थी, और तब फनून जंग इब्तदाई हालत में थे, जबकि इत्तेहादियों ने यह सबक इतना अरसा गुजरने के बाद इसलिए उस वक्त सीखा जब जंगी उलूम और फनून अपने इंतहा को पहुंचे हुए थे। क्या इन वाकयात पर गौर करने से ये जाहिर नहीं होता कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला एक नादरा ही रोजगार हस्ती थे, और मादरे गेती उन जैसा अजीम शान कायद आज तक पैदा न कर सकी। जंगे यरमूक के मौके पर एक शख्स ने रोमियों की तरफ नजर डाली और कहने लगा, ओहो, रूमी कितने ज्यादा हैं और मुसलमान कितने कम। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ओहो, रूमी कितने कम हैं और मुसलमान कितने ज्यादा। याद रखो, फौजें अल्लाह की मदद की बदौलत ज्यादा होती हैं और नाकामी और बुजदिली की वजह से कम होती हैं। पता हो शिकस्त का दारो मदार आदमियों की कसरत और किल्लत पर नहीं होता। फिर फरमाया, काश मेरे घोड़े अश्कर का पाँव अच्छा होता, फिर चाहे दुश्मन की तादाद हमसे कितनी ज्यादा क्यों ना होती, मुझे इनकी मुतलक परवाह ना होती। हम इस अजीम शान शख्स पर जिस कदर भी गौर करते हैं, उसकी शख्सियत के नित नए पहलू उजागर होते चले जाते हैं, और हैरानी होती है कि शख्स किस कदर बुलंद मर्तबे का मालिक था। इसी वाकये को देखिए, इससे मालूम होता है कि इंतहाई नाजुक पुरहौल पुरखतर मौके पर भी आप रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह की नुसरत पर पूरा पूरा भरोसा था। आप एक सिपा सालार दुश्मन के लश्कर की अजीम शान तादाद, उसके निजाम, उसकी तरतीब और सफबंदी को देखते हैं। बजाहिर कोई शक्ल इसकी फौज की फतहयाबी की नहीं है, लेकिन वो दुश्मन की तादाद और उसकी तैयारियों को किसी खातिर में नराते हुए कहता है कि फतह और नुसरत का दारो मदार फौजों की कसरत पर नहीं, बल्कि नुसरत इलाही पर होता है। ये इत्मीनान और ये वसूख महज ईमान का नतीजा था, और ये ईमान उसी शख्स को हासिल होता है जिसे अल्लाह दे। जिस वक्त रूमी सरदार जरबा ने आगे बढ़कर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके लकब सैफुल्लाह की तशरीह चाही, तो आपने उसे धोखे में रखना या धोखा देना नहीं चाहा। हालांकि आप बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते थे, इसके बरखिलाफ आपने बगैर किसी किस्म की रंग आमेजी के उसके सामने हकीकत बयान कर दी और बड़े दिलनशीन पैराए में उसे इस्लाम लाने की दावत दी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिद्क गोई और इस्लामी उसूलों को नहायत आला पैराई में बयान करने का असर था कि जरबा ने मैदान जंग में ही इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े से हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत सच्चाई के पैकर और इस्लाम के मुबल्लिग की हैसियत में सामने आती है। इसी पर बस नहीं, कुर्बानी और जिहाद का जो नमूना उस मौके पर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश किया, इसकी नज़ीर आज तक दुनिया की तारीख पेश करने से कासिर है। ऐसे वक्त में कि जब इंसान को अपने अजीम और शान कारनामों के बदले अपने लिए इनाम और इकराम और बेहतरीन सिले की तवक्का होती है, हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हुक्म पहुंचता है कि उन्हें अमारत से माजूल किया जाता है। उस वक्त लड़ाई में आग पूरे जोर शोर से भड़क रही थी, लेकिन आपके दिल में जरा भी मलाल पैदा ना हुआ। जिस जोश और खरोश से पहले दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, उसी जोश से बल्कि उससे भी बढ़कर बाद में मुकाबला करते रहे। ना कि उनकी जुर्रतमंदी में कोई फर्क आया, ना ही उनके अखलास में कोई कमी वाकई हुई। वो कायद की रूह के साथ सिपाही और सिपाही की सूरत में कायद के फराइज सर अंजाम देते रहे, और इस इल्म के बावजूद कि वो माजूल हो चुके हैं और अब जंग की फतह का सेहरा दूसरे शख्स के सर पर रखा जाएगा, उस वक्त तक बराबर दुश्मन से लड़ते रहे जब तक उसे शिकस्त ना दे ली। अगर ऐसा वाकया हमारे जमाने में पेश आए और किसी कमांडर की बरतरफी इस तरह अमल में लाई जाए, तो यकीनन वो जनरल हर मुमकिन तरीके से अपनी हतक का बदला लेने की कोशिश करेगा और अपने जानशीन को नाकाम करने में कोई दकीका फरोगुजाश्त ना करेगा। بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس حکومت کا تختہ ہی الٹ دے جس نے اس کی قدر نہ پہچانی۔ لیکن جب ہم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معزول ہونے کے بعد اپنی وفات تک ایک ایسے سپاہی کی طرح کام کرتے رہے جو ریاست اور امارت کی صفات سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ نے نہ کمزوری دکھائی اور نہ کبھی مفروضہ کام کو سر انجام دینے سے انکار کیا، بلکہ پورے اخلاص، جوش و خروش اور تندہی کے ساتھ بدستور دین کے کام میں مصروف رہے۔ آپ کو نہ اس بات پر ناز تھا کہ خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات کے انتہائی معترف تھے، اور نہ اس بات کا رنج کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا اور ایک ہی مدعا، وہ تھا دین کی خدمت اور امام کی اطاعت۔ آپ فرمایا کرتے تھے، تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات دی، وہ مجھے عمر سے زیادہ محبوب تھے، اور تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا، وہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ناپسند تھے مگر پھر مجھ سے جبرن ان کی محبت کرائی۔ جو لوگ بڑے فخر سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ پہلے جنگ عظیم میں مسٹر چرچل کو وزارت بحریہ سے علیحدہ کر دیا گیا تو وہ میدان میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ انہی مثالوں کا اثر ہے جو اس سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ جو صفات آج یورپین اقوام میں پیدا ہو رہی ہیں وہ وہی ہیں جو 1300 سال پہلے مسلمانوں میں موجود تھیں۔ انہی صفات کی وجہ سے مسلمان دنیا کے شہنشاہ اور مالک بن گئے، اور انہی صفات پر عمل کر کے یورپین اقوام دنیا میں سربلندی اور کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان عظیم الشان فتوحات اور اعمال جلیلیہ کا ذکر ختم ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سر انجام پائے، اور جنہیں خلیفۃ المسلمین کی پوری حمایت حاصل تھی۔ اب ہم نیا باب، ایک نئے دور کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی سے شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک ایک سپاہی کی حیثیت سے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ حصہ 4، روم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں۔ فتح دمشق۔ جنگ یرموک کا اختتام رومیوں کی شکست فاش، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی امارت پر ہوا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری بھیجی اور مال غنیمت کا خمس ارسال کیا۔ اس کے بعد یرموک کے علاقے میں بشیر بن کعب حمیری کو اپنا نائب بنا کر مفرورین کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور سفر کے مقام پر آ کر اترے۔ یہاں انہیں خبر ملی کہ رومی فہل میں جمع ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ اہل دمشق کے امداد کے لیے حمص سے کمک آ رہی ہے۔ آپ نے ان حالات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور ان سے ہدایت طلب کی۔ آیا رومیوں پر حملے کا آغاز فہل سے کیا جائے یا دمشق سے؟ خود جواب کے انتظار میں وہ سفر میں ہی ٹھہر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آیا کہ اپنی کارروائی کا آغاز دمشق سے کرو، کیونکہ دمشق شام کا قلعہ اور دارالحکومت ہے۔ البتہ فہل کے سامنے بھی اپنا ایک دستہ متعین کر دو تاکہ جب تک تم دمشق سے فارغ نہ ہو جاؤ فہل والے کچھ نہ کر سکے۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت ابو عبیدہ نے فہل کی جانب 10 قائد عمارہ بن ابن مخنش کی زیر سرکردگی روانہ کر دیے۔ ذوالقلعہ کو ایک دستہ دے کر انہیں دمشق اور حمص کے راستے پر متعین کر دیا تاکہ حمص کی جانب سے کوئی مدد رومیوں کو نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح علقمہ بن حکیم اور مسروق کو دمشق اور فلسطین کے راستے پر متعین کر دیا تاکہ فلسطین کی جانب سے رومیوں کا کوئی دستہ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ اسی طرح چاروں طرف سے رومیوں کی کمک کے راستے مسدود کر دیے گئے۔ ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد ابو عبیدہ سفر سے روانہ ہوئے اور دمشق پہنچ کر چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب فرادیس کے سامنے متعین کیا، شرجیل بن حسنہ کو باب دوما کے سامنے، قیس بن حیسرہ کو باب فرج کے سامنے، और हजरत खालिद बिन शरकी को सामने ठहरने का हुक्म दिया। खुद हजरत अबू उबैदा बाबे जाबिया के सामने उतरे रजी अल्लाह ताला अन्हुम जमिया। 70 दिन तक मुहासरा जारी रहा। मुसलमान इस दौरान तीरों और मुंजनीकों से शहर पर हमले करते रहे। इस दौरान उधर अहले शहर हरकल की जानिब से कुमक का इंतजार में रहे, जबकि चारों तरफ से रास्ते बंद थे। जब अहले शहर को कुमक पहुंचने की कोई उम्मीद न रही तो वो बेहद घबरा गए। ले देकर ये उम्मीद बाकी रह गई कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, मुसलमान यहाँ की सर्दी शदीद सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वापस हो जाएंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी मोहूम साबित हुई और मुसलमान बराबर शहर का मुहासरा किए पड़े रहे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह आदत थी कि ना खुद सोते थे और ना दूसरों को सोने देते थे। दुश्मन की मामूली सी मामूली बात का भी उन्हें पता रहता था। उनकी आंखें बहुत तेज थी। उन्हें मालूम पड़ा कि ईसाइयों के बतरीक यानी लाट पादरी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है और उसने खुशी में तमाम शहर वालों की दावत की है। तमाम लोग खाने पीने में मशगूल हैं और अपने मफूजा कामों और फराइज से बिल्कुल गाफिल हैं। शहर की मुहाफिज फौज भी शराब के नशे में धुत है। आपने पहले ही से सीढ़ी नुमा कमंदे तैयार कर रखी थी। जब रात छा गई तो आपने फसील फानने की तैयारियां की और उन लोगों को लेकर जो इराक से आपके साथ आए थे आगे बढ़े। उन लोगों में काका बिन उमरू और मजूर बिन अदी जैसे अशखास पेश पेश थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों को यह हिदायत की कि जब तुम फसील से हमारी तकबीरों की आवाज़ें सुनो तो फौरन फसील पर चढ़ आओ और दरवाजे पर हमला कर दो। जब आप और आपके साथी दरवाजे पर पहुंचे जिसके सामने आप डेरे डाले हुए थे तो आपने अपनी कमंदें फसील के कंगरों पर फेंकी। इनकी कमरों के साथ वो मुश्कें बंधी हुई थी जिनके जरिए उन्होंने खंदक को तैर कर पार किया था। जब कमंदें अच्छी तरह कंगरों से अटक गईं तो काका बिन उमरू और मजूर बिन अदी और उनके जरिए फसील पर चढ़ गए और तमाम कमंदों को जो उनके साथ थी दूसरे कंगरों में अटका कर फसील से नीचे लटका दिया। ये अमर काबिले जिक्र है, जिस जगह से वो फसील पर हमलावर हुए थे वो जगह तमाम शहर में सबसे ज्यादा मुस्तहकम थी। खंदक भी इस जगह काफी चौड़ी थी और पानी से लबालब भरी हुई थी। इस तरह बजाहिर ये हिस्सा नाकाबिले कबूल नजर आता है। जब काका और मजूर सारी कमंदे लटका चुके तो हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों को लेकर फसील पर चढ़ गए। कुछ लोगों को तो हिफाजत के लिए फसील पर ही छोड़ दिया और बाकी लोगों को लेकर फसील की दूसरी तरफ उतर गए। नीचे उतर कर आपने फसील पर मुतय्यन लोगों को तकबीर कहने का हुक्म दिया। चुनाचा उन्होंने तकबीरें कहनी शुरू की, जिन्हें सुनकर नीचे खड़ी हुई फौज के कुछ आदमी तो कमंदों के जरिए फसील पर चढ़ आए और कुछ दरवाजे की तरफ भागे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने करीब के दुश्मन को कत्ल करते हुए दरवाजे तक पहुंच गए और दरबानों को कत्ल करके कुफलों को तोड़कर दरवाजा खोल दिया। मुसलमान फौज जो बाहर मुंतजर खड़ी थी शहर में दाखिल हो गई। जब शोर गुल मचा तो तमाम शहर वाले जो शराब में मदहोश थे घबरा कर उठ खड़े हुए, लेकिन उनकी समझ में ना आता था कि ये क्या हो गया। मुसलमान तलवारें चलाते और दुश्मनों को कत्ल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब अहले शहर को पूरी तरह होश आ गया और उन्होंने हकीकत को समझा तो वो शहर के दूसरे दरवाजे की तरफ भागे जिनके सामने दूसरे मुसलमान सरदार डेरे डाले पड़े थे। मुसलमानों ने अहले दमिश्क को निस्फ निस्फ तकसीम पर मुसालहत की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने ये दावत नामंजूर कर दी थी और बदस्तूर मुकाबले पर अड़े रहे। जब हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार ने उनका सफाया करना शुरू किया तो उन्होंने दूसरी तरफ के मुसलमानों से सुलह की दरख्वास्त की, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। रोमियों ने झटपट शहर के दरवाजे खोल दिए और कहा कि हमें खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमले से बचाओ। चुनाचा शहर के तीन अतराफ से मुसलमान सुलह के साथ शहर में दाखिल हुए। मशरक़ी जानिब से हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनों को कत्ल करते हुए आ रहे थे। शहर के वस्त में उनकी मुलाकात दूसरे मुसलमान सरदारों से हुई। थोड़ी बहुत बहस व तमहीज के बाद यह तय पाया कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से की तरफ का हिस्सा भी सुलह के हुक्म में शामिल होगा। मुसालहत की शराइत ये थी कि मफ्तूहीन चांदी सोने और जायदाद का पांचवा हिस्सा अदा करें और फी कस एक दीनार और फी जरीब जमीन एक जरीब गेहूं सालाना अदा करें, लेकिन शाही खानदान और उसके मुलहकीन के तमाम जमीने और ममलू का सामान माल गनीमत करार दिया गया। मारकाए फहल। जब मुसलमान दमिश्क की फतह से फारिग हो गए तो उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय पर अमल करते हुए फहल का कस्द किया। کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال حمص اور دیگر رومی شہروں کا رخ نہ کیا جائے، کیونکہ رومیوں کی ایک بھاری فوج جو مورخین کے اندازے کے مطابق 80,000 سے کم نہ تھی، مسلمانوں کے عقب میں موجود تھی۔ خصوصاً پہل کی فوجیں رومیوں کے لیے ڈھال کا کام دے رہی تھیں اور انہی سے رومیوں کی توقعات وابستہ تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑا اور اسلامی لشکر پہل کی جانب روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے انہیں اس علاقے کی حکومت تفویض کی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و تکریم کے خیال سے آپ کو مقدمے پر مقرر کیا، حضرت ابو عبیدہ کو میمنہ پر، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ پر، سواروں پر زرار بن العزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پیدل فوج پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا۔ رومیوں نے جب سنا کہ مسلمانوں کی فوجیں فحل پر حملہ کرنے کے ارادے سے بڑھی چلی آ رہی ہیں تو انہوں نے ندیوں کے بند توڑ دیے، جس سے ارد گرد کی تمام زمین زیر آب ہو کر دلدل بن گئی۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اس صورتحال سے بڑے کبیدہ خاطر ہوئے، لیکن بالآخر یہی دلدلیں ان کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوئیں۔ مسلمان ایک لمبے عرصے تک وہاں ڈیرے ڈال کر پڑے رہے۔ رومیوں نے مسلمانوں کو غافل خیال کر کے ایک دن بڑے زور و شور سے ان پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمان بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر رومیوں کا مقابلہ کیا۔ پہلی رات اور اگلے روز رات تک میدان کارزار گرم رہا۔ آخر جب رومیوں کی ہمتیں پست ہو گئیں تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا، گھبراہٹ میں وہ راستہ بھول گئے۔ شکست و پریشانی نے انہیں دلدل اور کیچڑ میں دھکیل دیا اور وہ وہاں پھنس کر رہ گئے۔ 80,000 فوج میں سے اکا دکا شخص کے سوا کوئی بچ کر نہ جا سکا۔ تمام فوج اسی جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اس لڑائی کے بعد حضرت ابو عبیدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر حمص روانہ ہو گئے۔ جنگ مرج الروم۔ جب ہرقل کو دمشق اور اردن میں اپنے لشکروں کی شکست کی خبر ملی اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا ارادہ اب حمص کو فتح کرنے کا ہے، تو اس نے مشہور پادری توزر کی زیر قیادت ایک عظیم الشان لشکر مسلمانوں کی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں اس لشکر کو ناکافی سمجھ کر اس نے شنس کی زیر قیادت اتنا ہی بڑا ایک اور لشکر بھی توزر کے پیچھے روانہ کیا۔ دمشق کے مغرب میں مرج الروم کے مقام پر مسلمانوں کی ان دونوں لشکروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ شنس رومی کے مقابل ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توزر کے مقابلے میں نکلے۔ صبح اٹھ کر مسلمانوں نے دیکھا تو توزر اپنی فوج لے کر غائب ہے، البتہ شنس اپنی فوج کے ہمراہ ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ توزر اپنی فوج لے کر دمشق کی جانب جا رہا ہے۔ آپ نے فوراً بھانپ لیا کہ توزر کا مقصد دمشق پہنچ کر اچانک اس فوج پر حملہ کرنا ہے جو شہر کی حفاظت کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کی سرکردگی میں وہاں متعین کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے نہایت تیزی سے اس کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور دمشق پہنچ کر اسے مسلمانوں کی ایک فوج سے نہیں بلکہ دو فوجوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ابھی توزر اور یزید بن ابو سفیان کی فوجوں کا مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ دمشق پہنچ گئے اور توزر کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آگے سے یزید کی فوج کے نیزے رومیوں کے سینے چلنے کر رہے تھے اور پیچھے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تلواریں ان کا کام تمام کر رہی تھیں۔ فرار کے لیے انہیں کوئی راہ نہ ملتی تھی، بہت ہی کم لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ سکے۔ فوج کا سپہ سالار توزر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ یہ جنگ 13 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ فتح حمص و حاضر۔ جب ہرقل کو اپنی فوجوں کی تباہی کا حال معلوم ہوا تو وہ حمص سے بھاگ گیا اور جاتے ہوئے اپنے عامل کو حکم دے گیا کہ جہاں تک ہو سکے شدید سردی کے دنوں میں مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ سردی کی شدت سے حوصلہ ہار بیٹھیں اور جم کر مقابلہ نہ کر سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعلبک کے راستے حمص روانہ ہوئے. مقدمۃ الجیش کے طور پر آپ نے سمک بن اوسط کندی کو اپنے آگے روانہ کر دیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقا کے فتح کرنے کے لیے بھیجا. اسے فتح کرنے کے بعد آپ پھر حضرت ابو عبیدہ سے حمص آن ملے. مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ بڑی سختی سے کیا ہوا تھا. جب سردی کا موسم گزر گیا اور رومیوں کی آخری امید بھی جاتی رہی تو انہوں نے مجبوراً صلح کی درخواست کی جو مسلمانوں نے منظور کر لی اور شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا. حمص شام کا بہت پرانا اور مشہور شہر ہے. اس کے ارد گرد مضبوط فصیل بنی ہوئی ہے. یہ شہر دمشق اور حلب کے درمیان یکساں مسافت پر واقع ہے. جنگوں سے فراغت کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مقیم ہو گئے تھے. باقی زندگی حمص میں گزاری. یہیں پر آپ کی بیوی اور آپ کے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی قبریں ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب ہی ایاز بن غنم کی قبر بھی ہے. حمص کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنسرین کی طرف بھیجا. راستے میں حاضر کے مقام پر رومیوں کے ایک لشکر سے آپ کی مٹ بھیڑ ہو گئی جس کا سردار میناس تھا. میناس قیصر کے بعد رومیوں کی سب سے اہم شخصیت تھی. دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی. میناس اور اس کے لشکر کا اکثر حصہ میدان جنگ میں کام آیا. جنگ کے بعد حاضر کے باشندوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ ہم نے قیصر کے زور ڈالنے پر مجبوراً جنگ کی تیاری کی تھی لیکن ہمارا دل آپ سے لڑنے کو نہیں چاہا تھا. اس لیے آپ براہ کرم ہماری جان بخشی کر دیجئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے. فتح قنسرین و مرعش. حاضر سے روانہ ہو کر آپ قنسرین روانہ ہوئے. قنسرین شام کے ایک صوبے کا نام ہے. اسی صوبے میں قنسرین کا شہر بھی ہے جو حلب سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے. شہر والے پہلے ہی سے قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر والوں کو کہلا بھیجا کہ اس طرح قلعہ بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم آسمان پر بھی چڑھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے پاس پہنچا دے گا یا تمہیں ہمارے پاس اتار لائے گا. اہل قنسرین کو بالآخر اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا. انہوں نے صلح کی درخواست کی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ شہر کی فصیل کو منہدم کر دیا جائے گا. شہر والوں نے جان کے خوف سے مجبوراً اس شرط کو منظور کر لیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل کو منہدم کرا دیا. ہرقل حمص کو چھوڑ کر الرہا چلا گیا. وہاں سے حاضر کے میدان جنگ میں رومی لشکر کی تباہی اور قنسرین کی فصیل کے انہدام کی خبریں ملیں جنہیں سن کر اسے یقین ہو گیا کہ اب شام میں اس کی بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے وہ انتہائی حسرت و یاس اور افسوس سے یہ کہتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شام سے رخصت ہو گیا. اے شام، رخصت ہونے والے کا سلام قبول ہو. ایسی جدائی ہے جس کے بعد ملاقات ممکن نہیں. حاضر اور قنسرین میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے انہی کا سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل تبدیل ہو گئی اور آپ نے فرمایا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارناموں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو سپہ سالار بنا لیا ہے. اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل کرے، وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے. قنسرین کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرعش کی جانب روانہ ہوئے. اسے فتح کرنے کے بعد اس کے باشندوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کو منہدم کرا دیا. مرعش کا شہر شام کی ان سرحدوں پر واقع ہے جو بلاد روم سے ملتی ہیں. مرعش کی فتح کے بعد آپ نے حدس کا قلعہ فتح کیا. فتوحات کا اختتام. اب جب کہ ہم آپ کے عدیم المثال کارناموں اور فتوحات کے ذکر سے فارغ ہو چکے ہیں، ایک ایسے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں جو ان یورپین معترضین کی طرف سے، جنہیں اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی، عموماً پیش کیا جاتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک بہت ہی قلیل وقت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایران و روم کی سلطنتوں پر چھا جانے اور ایک وسیع قطع ارضی پر قابض ہو جانے کا سبب مسلمانوں کی موت سے بے خوفی، اسلامی فوجوں کی شاندار بہادری، ان کے سرداروں کا بے نظیر جنگی تجربہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی فتح و نصرت محض اس وجہ سے تھی کہ اس وقت یہ غیر اسلامی حکومتیں داخلی انتشار سے مبتلا ہو کر کمزور ہو چکی تھیں. मुसलमानों ने इस दाखिली इंतशार से खातिर ख्वाह फायदा उठाया और इन पर पै दर पै हमले करके हज़्ब मंशा कामयाबी हासिल की। बादी उन नजर में अगरचा ये एतराज सही नजर आता है, लेकिन उन लोगों ने जिन्हें तारीख के हकायक का जरा भी इल्म है, ये बात पोशीदा नहीं कि इस एतराज में कहाँ तक सदाकत है। ये ठीक है कि ये हुकूमतें दाखिली इंतशार में मुबतला थी, लेकिन साथ ही ये अमर भी तारीखी हैसियत रखता है कि दोनों सल्तनतों ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए हमेशा भारी भारी लश्कर रवाना किए। सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, बल्कि इन लश्करों की इमदाद के लिए कुमक का सिलसिला भी बराबर जारी रहता था। और ये लश्कर फनून जंग से भी अच्छी तरह बाखबर और पूरी तरह मुसल्ला और मुनज्जम होते थे। जंगे यरमूक के मौके पर रूमियों ने 2.5 लाख का लश्कर जर्रार मुसलमानों के मुकाबले के लिए जमा किया था। इससे कबल इतना अजीमुशान लश्कर कब किसी सल्तनत ने अपने मद्दे मुकाबले के लिए जमा किया होगा, और इंसानों ने किसी मौके पर जंगजुओं की इतनी बड़ी तादाद, इतनी भारी तादाद अपनी आंखों से देखी होगी। ये वाकयात ऐसे हैं जिनमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगरचा वो लोग जो हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अदीम उलमिसाल शख्स अपनी कौम में पैदा करने से कासिर रहे हैं, और जिनकी नजरों में मुसलमानों की तरक्की खार की तरह खटकती है, मुसलमानों के गलबे उनकी पै दर पै फतूहत और करील तरीन मुद्दत में मुसलमानों के हाथों ईरानियों और रूमियों की अजीम उशान सल्तनतों और बाजबरूद शहनशाहों की तबाही से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इन फतूहात को वो इन बजाहिर दिल खुशकुन लेकिन खिलाफ वाकया उजरात के पर्दों में छुपा देना चाहते हैं। पार्ट नंबर 8 यहाँ मुकम्मल होता है।